कार्यक्रम सत्यवचन में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, इन दिनों हम अपने इस कार्यक्रम में बाइबल अध्ययन कर रहे हैं यहोशू नामक पुस्तक की। इस पुस्तक का नाम इसराइलियों के एक वीर पुरुष यहोशू के नाम पर रखा गया, जिसका इब्रानी भाषा में अर्थ है यहोवा उद्धार। श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि इस पुस्तक के अध्ययन से आप सभी को आत्मिक लाभ अवश्य पहुँच रहा होगा। तो बराबर परमेश्वर के वचन के अध्ययन में हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल हूं और आशा करता हूं कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज भी प्रतिदिन की तरह परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम इन दिनों यहोशू की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और अब तक के अध्ययन में हमने देखा था कि इसराइल में उपस्थित पाप के कारण उन्हें ऐ नगर से पराजित होना पड़ा था, परंतु अब क्योंकि पाप का निवारण किया जा चुका था, परमेश्वर इसराइल को विजय दिलाने में दृढ़ संकल्प था। अतः यहोशू 30,000 योद्धाओं को लेकर परमेश्वर के निर्देशानुसार ऐ नगर पर चढ़ाई करता है और विजयी भी होता है। तो आइए हम आगे बढ़ने से पहले परमेश्वर से सहायता मांगे और प्रार्थना करें। प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके सामर्थ्य वचन के लिए, जिसके माध्यम से आप हमें सिखाते, समझाते और बताते हैं कि हम अपने जीवन में आपकी निकटता में आए। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, विचार विमर्श करना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हम सबको अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ दीजिए, ताकि हम इसे समझ सकें, अपने जीवन में ग्रहण करने पाएं और उसके अनुसार चल सकें। जो हमारे भाई श्रोता भाई बहन बीमार हैं, दुखी हैं, निराश हैं, चिंताओं में हैं, प्रभु आप उनकी भी सहायता करें, ताकि वे भी आपके प्रेम में होकर आनंद को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद पिताजी प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, परमेश्वर की सहायता से ऐ नगर पर विजय पाने के पश्चात पहला काम जो यहोशू ने किया वह था पर्वत एबाल पर परमेश्वर के लिए वेदी बनाना और व्यवस्था के अनुसार इसराइल को परमेश्वर की आशीषों और श्राप को स्मरण करवाना। यहोशू आशीष और श्राप सुनाता है। तो आइए हम पढ़ते हैं यहोशू की पुस्तक 8 अध्याय उसके 30 से 32 पद। तब यहोशू ने इसराइल के परमेश्वर यहोवा के लिए एबाल पर्वत पर एक वेदी बनवाई, जैसा यहोवा के दास मूसा ने इसराइलियों को आज्ञा दी थी और जैसा मूसा के व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है। उसने समूचे पत्थरों की एक वेदी बनवाई और जिस पर औजार नहीं चलाया गया था, और उस पर उन्होंने यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाए और मेल बलि किए। उसी स्थान पर यहोशू ने इसराइलियों के सामने उन पत्थरों के ऊपर मूसा की व्यवस्था जो उसने लिखी थी उसकी नकल कराई। मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहोशू ने पर्वत एबाल पर परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई और इसराइल ने मूसा के आदेशानुसार अनिवार्यताएं पूरी की। यहोशू ने व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 11 उसके 26 से 32 पद में यह व्यक्त किया था और आशीष और श्राप को भी दोहराया था। तब हम आगे देखते हैं यहोशू 8 अध्याय उसके 34 और 35 पद में लिखा हुआ है, उसके बाद उसने आशीष और श्राप की व्यवस्था के सारे वचन जैसे जैसे व्यवस्था की पुस्तक में लिखे हुए हैं वैसे वैसे पढ़ पढ़ कर सुना दिए। जितनी बातों की मूसा ने आज्ञा दी थी उनमें से कोई ऐसी बात नहीं रह गई जो यहोशू ने इसराइल की सारी सभा और स्त्रियों और बाल बच्चों और उनके साथ रहने वाले परदेशी लोगों के सामने भी पढ़कर न सुनाई। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए कि मूसा की संपूर्ण व्यवस्था को पढ़ा गया था, मात्र कुछ एक अंश ही नहीं, संपूर्ण व्यवस्था पढ़ी गई। यह प्रदेश से संबंधित नियम थे क्योंकि अब समय आ गया था कि इसराइल को परमेश्वर की वाचा और शर्तें स्मरण करवाई जाएं। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 8 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 9 में आते हैं और इसमें हम विषय देखते हैं गिबोनियों के साथ समझौता। प्रतिज्ञा के देश के विजय अभियान में यहोशू के समक्ष तीन बैरी थे, यरीहो, ऐ और गिबोनी। यहोशू के ये तीन बैरी आज मसीही विश्वासियों के बैरियों के प्रतीक हैं। यरीहो संसार का प्रतीक है, ऐ नगर देह का प्रतीक है और गिबोनी शैतान के प्रतीक हैं। मित्रों, आप यहोशू की रणनीति समझ रहे होंगे। सबसे पहले उसने भूभाग के केंद्र में उपस्थित यरीहो पर अधिकार करना चाहा, फिर यरीहो के उत्तर पूर्व में स्थित ऐ नगर को जीतना और तब दक्षिण की ओर बढ़ना जो गिबोनियों की संयुक्त सेना थी। हम देखेंगे कि गिबोनी बहुत चतुर और सिद्ध थे। आइए हम पढ़ते हैं यहोशू की पुस्तक 9 अध्याय उसके 1 और 2 पद में। यह सुनकर हित्ती, एमोरी, कनानी, परिज्जी, हिवी और यबूसी जितने राजा यर्दन के इस पार पहाड़ी देश में और नीचे के देश में और लबानोन के सामने के महानगर के तट पर रहते थे, वे एक मन होकर यहोशू और इसराइलियों से लड़ने को इकट्ठे हुए। मित्रों, इन राजाओं ने इसराइल का सामना करने के लिए संयुक्त सेना तैयार करने का विचार किया, परंतु किसी कारणवश वे एक नहीं हो पाए और इसराइल के आगे बढ़ने में बाधा उत्पन्न न हुई। संभवतः यह हो सकता है कि गिबोनियों ने उनके साथ छल किया। गिबोनियों का विचार था कि इसराइल से युद्ध करने की अपेक्षा संधि की जाए। हम यहोशू 9 उसके 3 से 9 पद में पढ़ते हैं, जब गिबोन के निवासियों ने सुना कि यहोशू ने यरीहो और ऐसे क्या क्या किया है, तब उन्होंने छल किया और राजदूतों का भेष बनाकर अपने गधों पर पुराने बोरे और पुराने फटे और जोड़े हुए मदिरा के कुप्पे लादकर अपने पांव में पुराने गांठी हुई जूतियां और तन पर पुराने वस्त्र पहने और अपने भोजन के लिए सूखी और फफूंदी लगी हुई रोटी ले ली। तब वे गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास जाकर उससे और इसराइली पुरुषों से कहने लगे, हम दूर देश से आए हैं, इसलिए अब तुम हमसे वाचा बांधो। इसराइली पुरुषों ने उन हिवियों से कहा, क्या जाने तुम हमारे मध्य में ही रहते हो, फिर हम तुमसे वाचा कैसे बांधे। उन्होंने यहोशू से कहा, हम तेरे दास हैं। तब यहोशू ने उनसे कहा, तुम कौन हो और कहां से आए हो। उन्होंने उससे कहा, तेरे दास बहुत दूर देश से तेरे परमेश्वर यहोवा का नाम सुनकर आए हैं, क्योंकि हमने यह सब सुना है, अर्थात उसकी कृति और जो कुछ उसने मिस्र में किया। मेरे मित्रों, यहाँ पर गिबोन चतुर ही नहीं झूठे भी थे। उन्होंने दूर देश के राजदूत होने का स्वांग रचा, जबकि सच तो यह है कि वे यरूशलेम से कुछ मील दूर ही वास करते थे। उन्होंने यहोशू से कहा कि वे वास्तव में जीवित एवं सच्चे परमेश्वर की उपासना करना चाहते थे। उन्होंने यहोशू को अपने पुराने मदिरा के कुप्पे, वस्त्र और जूतियां और फफूंद लगी हुई रोटियां दिखाई कि यदि यहोशू का ध्यान उस ओर ना गया तो हो ना हो वह उन्हें देखे। यह सब धोखा ही था। यहोशू उनके प्रपंच में पड़ गया। परमेश्वर का उन्हें यह आदेश था कि वे उस देश के निवासियों से समझौता न करें, वरन उनका सर्वनाश कर दें। यद्यपि यहोशू परमेश्वर के आज्ञा पालन के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित था, वह गिबोनियों द्वारा संधि करने के लिए चला गया। ध्यान दीजिए कि यहोशू और इसराइल के प्राचीनों ने गिबोनियों से संधि करने में परमेश्वर की इच्छा जानने की प्रयास नहीं की। आप जानते हैं कि यरीहो संसार का प्रतीक है। आप संसार पर कैसे जय पाते हैं? विश्वास के द्वारा। ऐ नगर देह का प्रतीक है, और आप देह पर कैसे जय प्राप्त करते हैं? युद्ध करके नहीं, अपनी दुर्बलता को स्वीकार करके और परमेश्वर के समक्ष अंगीकार करके परमेश्वर के आत्मा को विजय का अवसर प्रदान करते हैं। मित्रों, सदा स्मरण रखें कि परमेश्वर ने उनसे कहा था, मैंने ऐ के राजा को, उसकी प्रजा और उसके नगर को देश समेत तेरे वश में किया है। अब आते हैं तीसरे वैरी गिबोनी, जो शैतान का प्रतीक है। नए नियम में इफिसियों में लिखा है, प्रेरित पौलुस का पत्र पुराने नियम की पुस्तक यहोशू का समन्वय है। हम इन दोनों में अनेक समानताएं देखते हैं। इफिसियों की पत्री अध्याय 6 उसके 11 पद में, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। जिस प्रकार इसराइल को गिबोनियों के छल के प्रति सावधान रहना था, उसी प्रकार आज विश्वासियों को शैतान के छल प्रपंच से सावधान रहना है। क्योंकि पौलुस कहता है इफिसियों 6 अध्याय उसके 12 पद में, हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, प्रधानों से नहीं और अधिकारियों से नहीं और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं। अतः स्पष्ट है कि हमारा वैरी लहू और मांस से नहीं है, वह आत्मिक है जो शैतान है। परंतु कितने विश्वासी आज उसे पहचान पाते हैं कि वह क्या करता है? वह अपने अनुसरण में आपको धोखे में फंसा लेता है। मुझे यह तो नहीं मालूम कि वह आपको शराबी या नशीली पदार्थों का आदि बनाता है, परंतु मेरे विचार में वह आपको मधुशाला और संसार के पाप के स्थानों में अपने अनुयायियों से लज्जित कराता है। वह पिछले रविवार आराधनालय में था और आने वाले रविवार भी आराधनालय में होगा। वह धार्मिकता का प्रदर्शन करता है और चाहता है कि आप उसे दंडवत करें, उसकी उपासना करें। मेरे मित्रों, वह यही चाहता है। वह बहुत चतुर और चालाक है और अनेक विश्वासी उसका शिकार बन जाते हैं। वह आपकी आंखों पर पर्दा डालने में निपुण है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 2:11 में पौलुस कहता है, शैतान का हम पर दांव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। दुर्भाग्य से आप और मैं कभी कभी उसकी युक्तियों को समझ नहीं पाते हैं। अब प्रश्न यह है कि आप उस पर कैसे विजयी होंगे? याकूब कहता है, याकूब के पत्र 4:7 में, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से अर्थात पास से भाग निकलेगा। मेरे मित्रों, आवश्यकता इस बात की है कि हमें परमेश्वर के अधीन होना है। यह पहली बात है। हमें इस युग में उसके अधीन कैसे रहना है? शैतान हम विश्वासियों को छलने के लिए तैयार खड़ा है। वह बड़ी चतुराई से काम करता है। स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि मैं आज के पवित्र जनों की मूर्खता पर अचंभित होता हूँ। वे हर एक संभावित युक्ति के अधीन हैं और यही कारण है कि धार्मिक अपवाद फूल फल रहे हैं। विश्वासी समझे बूझे बिना उन्हें सहयोग दे रहे हैं। हमें शैतान का विरोध करना है, जिसकी हमें संपूर्ण जानकारी नहीं, उससे हमें संबंध नहीं रखना चाहिए। शैतान के साथ संबंध बनाने का संकट आज भी वैसा ही है जैसा इसराइल पर आया, कि उन्होंने अपने अज्ञानता में गिबोनियों से संधि कर ली। मेरे मित्रों, इसराइल को जब पता चला कि गिबोनी उनके पड़ोसी थे, तब उन्होंने अपनी वाचा को ही मान लिया। हम आगे पढ़ते हैं, यहोशू 9:19-20 में लिखा हुआ है, तब सब प्रधानों ने सारी मंडली से कहा, हमने उनसे इसराइल के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाई है, इसलिए अब उनको छू नहीं सकते। हम उनसे यही करेंगे कि उस शपथ के अनुसार हम उनको जीवित छोड़ देंगे, नहीं तो हमारी खाई हुई शपथ के कारण हम पर क्रोध पड़ेगा। यद्यपि वाचा की परिस्थितियां छल से पूर्ण थी, वाचा का मान रखा जाता था। अब आप सोचेंगे कि पुराने नियम के वे लोग पिछड़े हुए थे, परंतु आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि वे वचन के पक्के थे। आज भी परमेश्वर यही चाहता है। हम यहोशू 9:21-27 में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, फिर प्रधानों ने उनसे कहा, वे जीवित छोड़े जाएं। सो प्रधानों के इस वचन के अनुसार वे सारी मंडली के लिए लकड़हारे और पानी भरने वाले बने। फिर यहोशू ने उनको बुलवा कर कहा, तुम तो हमारे ही बीच में रहते हो, फिर तुमने हमसे यह कहकर क्यों छल किया कि हम तुमसे बहुत दूर रहते हैं? इसलिए अब तुम शापित हो और तुम में से ऐसा कोई न रहेगा जो दास अर्थात मेरे परमेश्वर के भवन के लिए लकड़हारा और पानी भरने वाला न हो। उन्होंने यहोशू को उत्तर दिया, तेरे दासों को यह निश्चय बतलाया गया था कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने अपने दास मूसा को आज्ञा दी थी कि तुमको वह सारा देश दे और उसके सारे निवासियों को तुम्हारे सामने से सर्वनाश करे। इसलिए हम लोगों को तुम्हारे कारण से अपने प्राणों के लाले पड़ गए, इसलिए हमने ऐसा काम किया और अब हम तेरे वश में हैं। जैसा बर्ताव तुझे भला लगे और ठीक जान पड़े वैसा ही व्यवहार हमारे साथ कर। तब उसने उनसे वैसा ही किया और उन्हें इसराइलियों के हाथ से ऐसा बचाया कि वे उन्हें घात करने ना पाए। परंतु यहोशू ने उसी दिन उनको मंडली के लिए और जो स्थान यहोवा चुन ले उसमें उसकी वेदी के लिए लकड़हारे और पानी भरने वाले नियुक्त कर दिया, जैसा आज तक है। यहोशू ने उन्हें लकड़हारे और पानी भरने वाले नियुक्त किया। मित्रों, यहाँ पर 9 समाप्त होता है और अब हम 10 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि दक्षिणी अभियान और 5 राजाओं पर विजय और सूर्य का ठहर जाना। अब दूसरी ओर गिबोनियों के छल के कारण उसके सहयोगी राजा यरूशलेम, हेब्रोन, यरमूत, लकीश और एक्तोन ने संपूर्ण सेना एकत्र करके गिबोन पर चढ़ाई कर दी, जिसकी घटनाएं अध्याय 10 में व्यक्त है। गिबोनियों ने यहोशू से सहायता मांगी और यहोशू ने उन पांचों एमोरी राजाओं को परास्त किया और अपना दक्षिणी विजय अभियान भी पूरा किया। मित्रों, इस अध्याय में यहोशू के लंबे दिन का वृतांत है। आलोचक और पवित्र जन दोनों ही पूछते हैं, क्या यहोशू ने दिन को लंबा कर दिया था या करवाया था? इसके संभावित उत्तर हैं। पहला है, कुछ विचारक इस पर टिप्पणी करने से पीछे हटते हैं और ऐसा व्यवहार करते हैं कि यह विषय टिप्पणी योग्य नहीं है। और दूसरा, कुछ इसे गाथा कहते हैं, विशेष करके पद 12 के संदर्भ में कि इसका शब्दांश अर्थानुवाद अस्वीकार्य हो जाता है और चमत्कार घटना से पूर्ण रूपेण अलग हो जाता है। इस विचार के समर्थक प्रायः न्यायों 5 अध्याय के 20 पद के संदर्भ को आधार मानते हैं। आकाश की ओर से भी लड़ाई हुई, वरन तारों ने अपने अपने मंडल से सिसरा से लड़ाई की। मैं इसे गाथा कहकर अस्वीकार करना नहीं चाहता, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त जानकारी नहीं है इसे तथ्यों की अपेक्षा गाथा कहें। यहाँ एक पुरानी कहावत स्मरण आती है कि काव्य कभी कभी झूठ होते हैं। अब तीसरा विषय यहाँ देखते हैं, जो तीसरी बात है, पद 13 पर आधारित कुछ विचार हैं कि यह प्रकाश के परावर्तन का चमत्कार था। और चौथा विचारों का कहना है, जो कुछ विचारक मानते हैं कि परमेश्वर ने संपूर्ण सौरमंडल को रोक दिया था, उनके अनुसार यहोशू का यह दिन 23वें घंटे 20 मिनट का था। शेष 40 मिनट का उल्लेख दूसरा राजा 20 अध्याय उसके 8 से 11 पद में पाया जाता है, जहां हिजकिया राजा के लिए परमेश्वर ने धूप घड़ी की छाया 10 अंश पीछे लौटाई थी। यह उसके जीवनदान की प्रतीक्षा का चिन्ह था। पांचवी बात हम पाते हैं, कुछ विचारकों का मानना है कि परमेश्वर ने सूर्य चमकाने की अपेक्षा उसे अंधकारमय कर दिया था। बर्कले संस्करण में लिखा है कि हे सूर्य, गिबोन में ठहर जा। अमेरिकी स्टैंडर्ड संस्करण में टिप्पणी है, सूर्य शांत रहा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बाइबल में लिखा है कि यहोशू ने संपूर्ण रात्रि 40 मील यात्रा की थी और वैरियों पर आक्रमणात् आक्रमण किया। वह जुलाई का महीना था और छाया के अनुसार समय 105 अंश से 120 अंश का था, अर्थात छाया नाम मात्र की भी नहीं थी। और यहोशू नहीं चाहता था कि धूप तेज हो। और छठवें विचारक कहते हैं, सर्वोत्तम व्याख्या है जो है 4 और 5 को संयोजित करेंगे। यहोशू को अधिक प्रकाश और कम गर्मी चाहिए थी, अतः परमेश्वर ने पत्थरों की आंधी से धूप को कम किया। पद 12 में परमेश्वर ने पृथ्वी की गति कम की। हे सूर्य, तू गिबोन पर, इससे स्पष्ट है कि धूप गिबोन पर कड़ाके की थी। हे चंद्रमा, तू अयलोन की तराई के ऊपर थमा रहा। मित्रों, यह एक चमत्कार था, गिबोन की चमत्कारी रक्षा। देखते हैं इस अध्याय में व्यक्त प्रत्येक घटना की पृष्ठभूमि में गिबोनियों के साथ बांधी यहोशू की वाचा है। यहोशू को यह वाचा बांधने की अनुमति नहीं थी, परंतु अब क्योंकि उसने वाचा बांधी थी, इसलिए उसे निभाने के लिए वह बाध्य था। हम यहोशू की पुस्तक 10 अध्याय उसके 1 से 4 पद में पढ़ते हैं, जब यरूशलेम के राजा अदोनी सेदेक ने सुना कि यहोशू ने ऐ को ले लिया और उसको सत्यानाश कर डाला है, और जैसा उसने यरीहो और उसके राजा से किया था, वैसा ही ऐ और उसके राजा से भी किया है, और यह भी सुना कि गिबोन के निवासियों ने इसराइलियों से मेल किया और उनके बीच रहने लगे हैं, तब वे निपट डर गए, क्योंकि गिबोन बड़ा नगर वरन राजनगर के तुल्य और ऐसे बड़ा था, और उसके सब निवासी शूरवीर थे। इसलिए यरूशलेम के राजा अदोनी सेदेक ने हेब्रोन के राजा होहाम, यरमूत के राजा पिराम, लकीश के राजा यापी और इग्लोन के राजा दबीर के पास यह कहला भेजा कि मेरे पास आकर मेरी सहायता करो और चलो हम गिबोन को मारें, क्योंकि उसने यहोशू और इसराइलियों से मेल कर लिया है। मित्रों, जब राजाओं ने सुना कि गिबोनियों ने इसराइल के साथ संधि कर ली है, तब वे उनको नाश करने निकल पड़े। गिबोनी हिब्बी भी कहलाते थे। हम यहोशू 10 उसके 5 पद में पढ़ते हैं, इसलिए यरूशलेम, हेब्रोन, यरमूत, लाकिश और एग्लोन के पांचों एमोरी राजाओं ने अपनी अपनी सारी सेना इकट्ठी करके चढ़ाई कर दी और गिबोन के सामने डेरे डालकर उससे युद्ध छेड़ दिया। गिबोनियों ने क्या किया? यहोशू 10 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, तब गिबोन के निवासियों ने गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास यूं कहला भेजा कि अपने दासों की ओर से तू अपना हाथ न हटाना, शीघ्र हमारे पास आकर हमें बचा ले और हमारी सहायता कर, क्योंकि पहाड़ पर रहने वाले एमोरियों के सब राजा हमारे विरुद्ध इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने प्राण बचाव का संदेश यहोशू को भेजा, सहायता कर और शीघ्र आ। तब हम यहोशू 10 अध्याय उसके 7 पद में पढ़ते हैं, तब यहोशू सारे योद्धाओं और सब शूरवीर को संग लेकर गिलगाल से चल पड़ा। मित्रों, उनकी सहायता के लिए यहोशू आया। इसके मेरे विचार में दो कारण आते हैं। पहला, वाचा के कारण वह बाध्य था। दूसरा, उसे परमेश्वर का आदेश प्राप्त था कि वहां के निवासियों को नष्ट कर दे। उसकी सेना ने चढ़ाई की और उनकी रणनीति थी छापा मार युक्ति, और परमेश्वर ने उन्हें खदेड़ दिया। हम आगे बढ़ते हैं, यहोशू 10 उसके 12 से 14 पद में लिखा हुआ है, और उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इसराइलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इसराइलियों के देखते इस प्रकार से कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहा। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से पलटा न लिया। क्या यह बात याशार नाम पुस्तक में नहीं लिखी गई है? सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक न डूबा। न तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और न उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इसराइल की ओर से लड़ता था। मेरे मित्रों, इस अध्याय के आरंभ में हमने यहोशू के इस लंबे दिन के बारे में विभिन्न व्याख्याएं देखी हैं। यहोशू अध्याय 10 उसके 12 पद के अनुसार मेरे विचार में परमेश्वर ने संपूर्ण सौर मंडल को रोक दिया था कि यह चमत्कार ठहरे। सूर्य शांत हो गया था। यहोशू को अधिक प्रकाश की आवश्यकता थी कि युद्ध अविराम रहे। अतः परमेश्वर ने सौर मंडल को रोक दिया और पत्थरों की आंधी द्वारा धूप को कम किया। मित्रों, परमेश्वर ने सूर्य की गति थाम ली कि यहोशू की विजय पूरी हो। किसी प्रोफेसर ने कहा, एक मनुष्य के लिए संपूर्ण सौर मंडल की गति रोकना हास्यास्पद है। यह काल्पनिक प्रतीत होता है, परंतु परमेश्वर ने निश्चय ही यह चमत्कार किया। उसने अपने पुत्र को संसार में भेजा कि पापियों के लिए अपनी जान दे। यह तो सूर्य को रोकने से भी अधिक विस्मयकारी है। सूर्य को रोककर परमेश्वर ने अपनी बुद्धि और अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन किया। अपने पुत्र को संसार में भेजकर मानव रूप में क्रूस पर मरने के लिए दे दिया, तो वह उसके प्रेम का प्रदर्शन था। मित्रों, यदि आप पृथ्वी पर एकमात्र मनुष्य होते तो मसीह यीशु आपके लिए भी मरता। तब वह प्रोफेसर इसे भी मूर्खता कहेगा, और यह है भी, परंतु हमारे पास इसके लिए एक विशेष शब्द है, अनुग्रह। इफिसियों के पत्र अध्याय 2 उसके 8 पद में पौलुस लिखता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। मेरे मित्रों, निश्चय जाने कि परमेश्वर ने यह चमत्कार इसराइलियों के बीच में किया ताकि वे विजयी हो। आज वह हमारे बीच में अपने अनुग्रह को देता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से, ताकि हम उद्धार को प्राप्त करें। मेरे मित्रों, क्या आज आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि वह आपको उद्धार दे सकता है? आज अगर ऐसा नहीं है तो आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए, अपने विश्वास को जगाएं, उस पर विश्वास करें, क्योंकि वह आपको उद्धार देना चाहता है। मित्रों, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, और मैं आशा करता हूँ कि इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही आत्मिक आशीषें प्राप्त की है। अगले अध्ययन में हम फिर मिलेंगे, तब तक आप प्रभु के वचन में बने रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 1100019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
जंजीरों को तोड़ता है, तूफान के रुख मोड़ता है, जंजीरों को तोड़ता है, तूफान के रुख मोड़ता है, यीशु 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 यीशु, रिश्ता हमसे जोड़ता है, और ना तन्हा छोड़ता है, रिश्ता हमसे जोड़ता है और न तन्हा छोड़ता है, यीशु यीशु मेरा, यीशु 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 मेरा, यीशु यीशु, जंजीरों को तोड़ता है, तूफान के रुख मोड़ता है, यीशु यीशु मेरा, यीशु यीशु, जब मैं दुआ में तुझको बुलाऊं, तुझको बुलाऊं, पास सपने पाऊं, ओ जब मैं दुआ में तुझको बुलाऊं, तुझको बुलाऊं, पास सपने पाऊं, बंधन सारे तोड़ता है, रब से हमको जोड़ता है, बंधन सारे तोड़ता है, रब से हमको जोड़ता है, यीशु 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 यीशु, जंजीरों को तोड़ता है, तूफान के रुख मोड़ता है, यीशु यीशु मेरा, ये है उसकी सच्चाई जग में सदा है, रू में बसा है, जा में बसा है, उसकी सच्चाई जग में सदा है, रू की बातें बोलता है, वो गहरे खोलता है, रू की बातें बोलता है, राज वो गहरे खोलता है, यीशु यीशु मेरा, यीशु यीशु, जंजीरों को तोड़ता है, तूफान के रुख मोड़ता है, यीशु यीशु मेरा, यीशु यीशु।